वक्रतुण्ड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, जय श्री कृष्णा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदननी को। मैया जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबरी राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन परिसाजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड़गख परिधारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारी शोणित बीज हरे, मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, चौसठ योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करिता, ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, खड़ग खपरे धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर पाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हरी हरि बोल, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रस टू ऑल, हरी हरि बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज द सोल। हरी हरि बोल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। न शस्त्र पे न शास्त्र पे न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री राधे कृष्णा। तो हरि हरि बोल एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम पिछले कल भी नवरात्रों पे माता रानी के सब रूपों पे जो है वो चर्चा कर रहे थे, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सुना था कि माता रानी के 9 नवरात्रे होते हैं और माता रानी के 9 स्वरूपों की इन दिनों में पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम नवरात्रे वाले दिन माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा मैया की पूजा होती है, चौथे दिन कूष्मांडा मैया की, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री माता की जो है वो माता के रूप की जो है वो पूजा होती है। इसके अलावा कल हमने ये भी समझा था कि श्रीमद् भागवत में हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद महाराज अपने पुत्र से पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है, उस समय प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को नबदा भक्ति का उपदेश दिया था। क्या है नबदा भक्ति? नबदा भक्ति बेसिकली 9 तरह की भक्ति है जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी तरह की भक्ति है स्मरण, चौथी पाद सेवनम, पांचवी अर्चना, भगवान के चरणों में जब हम अर्चना करते हैं भगवान की अर्चना करते हैं, छठी भक्ति है वंदना, भगवान का जब हम वंदन करते हैं, सातवीं दास्य भक्ति, आठवीं सख्य भक्ति, सखा रूप में जब हम भगवान को जो है वो समझते हैं, और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन। इसके अलावा रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृतम सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम प्राप्ति के 9 सोपान बताए, इनकी भी चर्चा पिछले कल की थी। क्या है वो 9 सोपान? श्रद्धा, पहला सोपान है श्रद्धा। एक तरह से इनको सीढ़ी समझ लीजिए, पहले श्रद्धा आएगी, फिर साधु संग मिलेगा आपको, फिर थर्ड नंबर पे आप भजन क्रिया आरंभ करेंगे, फिर चौथे नंबर पे आपके अनर्थों की निवृत्ति होगी जो आपने पिछले पिछले जन्मों में किए हैं, फिर निष्ठा आएगी, निष्ठा के बाद आपको रुचि पैदा होगी, रुचि के बाद आसक्ति आएगी, और आसक्ति के बाद भाव आएगा, और भाव के बाद आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। तो कल हमने समझा था कि प्रथम नवरात्रे वाले दिन शैलपुत्री माता जो है वो हमारी प्रथम भक्ति जो कि श्रवण भक्ति है उसको पुष्ट करती हैं, और साथ ही साथ प्रेम प्राप्ति का प्रथम सोपान श्रद्धा को भी पुष्ट करती हैं। तो माता जो है शैलपुत्री जो पार्वती माता है जो पर्वत की पुत्री के रूप में माता का स्वरूप है वो हमारी श्रद्धा और श्रवण भक्ति को जो है वो पुष्ट करती हैं। दूसरी माता के स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता जो है वो हमारी कीर्तन भक्ति और साधु संघ को पुष्ट करती हैं। तो अगर जीवन में साधु संघ प्राप्त हो रहा है और जीवन में कीर्तन हो रहा है तो समझिए ब्रह्मचारिणी माता की कृपा जो है वो आपके ऊपर हो गई है। थर्ड, चंद्रघंटा माता जो है वो स्मरण भक्ति की प्रतीक है और साथ ही साथ भजन क्रिया जो है माता की कृपा से जो है हमारे जीवन में तेज हो जाता है। तो अगर आप भजन क्रिया कर पा रहे हैं और स्मरण आपका जो है वो हो रहा है भगवान का आपके जीवन में, तो समझ लीजिए चंद्रघंटा माता की कृपा आप पर हो चुकी है। और चौथी माता है कूष्मांडा माता। कूष्मांडा माता की कृपा आपके जीवन में अनर्थ निवृत्ति के रूप में आती है। आपके पुराने पुराने जन्मों के अनर्थ जो है वो मिट जाते हैं और आप पाद सेवन भक्ति में पुष्ट होते हैं। पाद सेवन में कल हमने समझा था कि अगर हम घर में लोगों के साथ व्यवहार को भी प्रभु के साथ व्यवहार के रूप में करें तो वो भी पाद सेवन भक्ति जो है वो कहलाती है। और अगर कोई अपना व्यवहार संभाल ले तो समझिए उनके जीवन में चौथा नवरात्रा जो है वो सिद्ध हो गया। पांचवें नंबर पे जो माता के स्वरूप की पूजा होती है वो है स्कंद माता। देखिए स्कंद माता के स्वरूप को अब हम देखते हैं। स्कंद माता जो है वो सिंह पे सवार हैं और माता रानी की जो है वो चार भुजाएं हैं, जिसमें से माता रानी ने दो भुजा में तो कमल पकड़ा हुआ है और एक भुजा माता रानी की मतलब वर्ध हस्त अवस्था में है, वर्ध मुद्रा में, मतलब माता रानी आशीर्वाद दे रही है। और एक हाथ माता रानी का गोद, जैसे उन्होंने कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ ना, तो इस तरह की मुद्रा में है कि बच्चे को जैसे गोद में नहीं लेते, तो माता रानी ने कार्तिकेय जी को गोद में लिया हुआ है। और माता रानी को भोग क्या लगता है? स्कंद माता को केले का भोग लगता है। और इनकी कृपा से होता क्या है? इनकी कृपा से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और हमें क्या मिलता है? सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और प्रेम प्राप्ति का जो पांचवा सोपान है वो क्या है? वो है निष्ठा। और पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चन भक्ति। तो माता रानी जो है वो अर्चन भक्ति के आचार्य हैं और माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में जो है वो निष्ठा पुष्ट होती है। पिछले कल में हमने डिस्कशन की थी कि तारकासुर नाम का एक असुर था, उसने वरदान ये मांगा था कि ब्रह्मा जी से कि उनको सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकता है क्योंकि माता सती की मृत्यु हो गई थी। तो एक तरह से उस असुर ने अपने लिए अमृतत्व का वरदान ही मांगा था। तो फिर देवताओं ने नारद जी को पार्वती माता के पास भेजा और पार्वती माता ने तपस्या की, तपस्या की। और फिर उसके पश्चात क्या हुआ? जब माता रानी की तपस्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी तो तब वृक्षा भी होती है, देखिए तपस्या में, तब सप्तऋषि उनके पास आए, माता रानी के पास। और माता रानी को क्या कहते हैं? माता रानी को कहते हैं कि तुम इतनी सुकुमार कोमल कन्या, तुम कहाँ यहाँ तपस्या में लग गई? किसकी बात मानकर तपस्या कर रही हो? पहले तो उन्होंने शिव जी के बारे में बोला, फिर कहा कि नारद मुनि के कहने पर तुम बस तपस्या कर रही हो। अरे नारद मुनि के कहने पर किसका घर बसा है? वो देखो दक्ष प्रजापति के पुत्र सबलाश्वर हरियश्व, नारद मुनि के एक उपदेश पे घर छोड़ दिया, तुम उस नारद मुनि के उपदेश पर जो है वो भक्ति कर रही हो, तपस्या कर रही हो। तो इस तरह से उन्होंने बोला और एक तरह से परीक्षा ली। तब क्या बोलती है पार्वती माता? तब पार्वती माता कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरहूं शंभु न तो रहूं कुवारी, तजउ न नारद कर उपदेसु, आप कही सत बार महेसु। तो क्या बोलती हैं? जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, कि मुझे अगर करोड़ों जन्म भी यहां पर तपस्या करनी पड़े तब भी मैं भगवान शिव का ही वरण करूंगी, ना तो रहूं कुवारी, नहीं तो मैं कुवारी ही रहूंगी। और थर्ड लाइन में क्या बोल रही हूं? तजू न नारद कर उपदेशा, नारद जी के उपदेश का मैं कभी त्याग नहीं करूंगी, चाहे मुझे 100 बार भगवान शिव जी ही आके मना क्यों ना करें। तो देखिए निष्ठा, स्कंद माता के रूप में जो माता का स्वरूप है वो हमें निष्ठा सिखाती है। ये होती है निष्ठा कि एकदम निष्ठ भाव से माता रानी जो है वो भगवान का भजन कर रही है, हमें भी सिखाती है। और फिर सप्तऋषि ने आशीर्वाद दिया और अल्टीमेटली माता का भगवान शिव के साथ जो है वो विवाह हुआ और भगवान शिव जी के कृपा से उनको दो पुत्र प्राप्त हुए, कार्तिकेय और गणेश। गणेश जी जो है वो विवेक का प्रतीक है, कार्तिकेय और कार्तिकेय जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। कार्तिकेय के 6 मुंह हैं और भगवान शिव ने उनको षडाक्षर मंत्र का उपदेश भी दिया था, जिसको 6 मुंह से कार्तिकेय जी जो है वो जपते हैं। अब कार्तिकेय का जन्म हुआ है, शिव पुत्र जो हुए हैं वो किसको मारेंगे, वो तारकासुर को मारेंगे। तो देवताओं ने तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया है और युद्ध हुआ है, और कार्तिकेय जी का वाहन जो है वो मयूर है और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर तारकासुर का वध किया है। तो माता रानी की कृपा जो है वो हम पर बनी रहे। अगर आपके जीवन में निष्ठा और अर्चन जो है वो पुष्ट हो रही है, अर्चन भक्ति, तो समझिए कि माता रानी की कृपा जो है वो आप पर हो गई है। हमें निष्ठा के साथ चलना है, नाम के प्रति निष्ठा, नामी के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा और अपनी साधना के प्रति निष्ठा, ये निष्ठा जो है वो हमारे जीवन में पुष्ट होती है। देखिए अनर्थ निवृत्ति वाले स्तर पर तो हमें फिर भी जोर लगाना पड़ता है, पर एक बार जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो उतना जोर जो है वो हमें नहीं लगाना पड़ता। आगे 6ठे दिन के माता का जो स्वरूप है वो है कात्यायनी माता का स्वरूप। देखिए कात्यायनी माता के जो है वो भी सिंह पर सवार है। कात्यायनी माता सिंह पर सवार है, उनके भी 4 हाथ हैं, उनके 2 हाथ जो है वो वर्ध मुद्रा में है आशीर्वाद देते हुए, और एक हाथ में उनके कमल और एक हाथ में तलवार है। कात्यायनी माता को भी शहद का भोग लगता है, शहद का भोग, और इनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये कात्यायनी ऋषि द्वारा जो है वो प्रकट जो की गई थी। और क्या मिलता है माता की कृपा से, आकर्षण शक्ति आती है, बेसिकली भगवान की तरफ आकर्षण जो है वो बढ़ता है। और 6ठी भक्ति कौन सी है, वंदन भक्ति है, और प्रेम प्राप्ति का 6ठा सोपान है रुचि। तो आपकी भगवान के प्रति जो है वो रुचि बढ़ जाती है और वंदन भक्ति का आपके जीवन में जो है वो उदय हो जाता है। जैसे कि मैं अभी डिस्कशन कर रही थी कि नर्थ निवृत्ति पर स्तर पर फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर एक बार आपके जीवन में अर्थ निष्ठा आ गई हो, निष्ठा के बाद आपको भगवान के नाम में रुचि आ गई, तो फिर आपकी मेहनत जो है वो उतनी नहीं रहती। फिर भी रास्ता तो आपको तय करना ही पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा, तो मेहनत उतनी नहीं रहती है। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आपने कहीं पे जाना है तो आधा रास्ता आपने चढ़ाई तय करनी है और आधा रास्ता उतराई तय करनी है, और उसके बाद आप वहां पहुंचेंगे। तो अनर्थ निवृत्ति वाले स्तर तक तो चढ़ाई चढ़ाई आपने कर लिया, वो उतराई का समय है, और उतराई में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी की चढ़ाई में लगती है। तो अब हम रुचि के स्तर पर पहुंचकर भगवान की तरफ तेजी तेजी से बढ़ते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 10 में वर्णन आता है कि गोपिकाओं ने भी प्रभु प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता की पूजा की थी। क्या कहती हैं गोपियां, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। क्या कह रही हैं गोपियां इसमें, गोपियां कह रही है हे कात्यायनी, हे महामाए, हे महायोगिन, हे अधीश्वरी, ऐसा हमें वर दें कि नंद गोप जो है उसका जो पुत्र है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो, हम आपको नमस्कार करती हैं। तो क्या कर रही हैं, बेसिकली वंदना कर रही है गोपियां कात्यायनी माता की, वंदना कर रही हैं। देखिए छोटी छोटी गोपियां, 3 साढ़े 3 4 वर्ष की, बड़ी नहीं है। और आप खुद सोचिए 3 साढ़े 3 4 वर्ष के बच्चे क्या पूजा करेंगे, वो माता रानी को वंदन करती है, नमस्कार करती है, फूल फल अर्पित करती हैं, अपनी तरफ से कर रही है, माता रानी उसी से भी प्रसन्न हो जाती है। और अगन मास में उन्होंने माता रानी की आराधना की, और माता रानी की आराधना करने के साथ साथ ही उनको जब अंतिम दिन था उनकी आराधना का, तो भगवान ने चीरहरण लीला की, जिसमें भगवान ने जो है वो गोपियों का देहाभिमान तोड़ा है और उनको कैसे प्रभु को प्राप्ति करनी है वो उसके बारे में बताया। देखिए गोपियां जो थी साधन सिद्ध गोपी भी थी और नित्य सिद्ध गोपी भी थी, सभी वो कात्यायनी माता की पूजा कर रही हैं, और बदले में उनको क्या मिलता है, लास्ट दिन कात्यायनी माता जो है वो आशीर्वाद देती हैं, भगवान का आशीर्वाद भी उनको मिलता है कि वो प्रभु को प्राप्त करेंगे पति रूप में। और जब रास पूर्णिमा होती है उस समय भगवान जो है उनको उनका वो भाव भी पूरा करते हैं। तो बेसिकली भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने के मार्ग में जो बाधा है वो कात्यायनी माता जो है वो दूर करती हैं, और गोपियों और भगवान के बीच का रास्ता जो है वो साफ करती हैं, और सीधा गोपियां जो है वो प्रभु की प्राप्ति जो है वो करती हैं। तो अगर आपके जीवन में भगवान भगवान के प्रति आपकी रुचि बढ़ रही है और आप भगवान का वंदन कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए छठा नवरात्रा आपके जीवन में संपन्न हो गया। कात्यायनी माता की कृपा आप पर हो गई। अब 7वें दिन हम माता के कालरात्रि स्वरूप की जो है वो पूजा करते हैं। क्या स्वरूप है कालरात्रि माता का? कालरात्रि माता जो है वो गधे पर सवार है, गधे पर, और माता की जो है वो 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में खड़ग है उनके, तलवार है, और एक हाथ में वज्र है, और दो हाथ जो है वो इस तरह से वरद मुद्रा में है आशीर्वाद देते हुए। माता का स्वरूप ना बड़ा विकराल है, काले काले केश, कमर पर माता ने बगंबर बांधा हुआ है, लाल वस्त्र, गले में माता के मुंडों की माला है, विकराल भव्य स्वरूप, विकराल। और माता रानी को गुड़ का भोग लगता है, गुड़ का भोग। और माता रानी की आराधना करने से क्या होता है? व्यक्ति की शोक से मुक्ति होती है, जो व्यक्ति के जीवन में शोक होता है ना, उससे मुक्ति व्यक्ति को मिलती है। और नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति कौन सी है? दास्य, दास्य भक्ति है। और प्रेम प्राप्ति का जो 7वां सोपान है वो क्या है? वो है आसक्ति। तो माता रानी कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति के जीवन में प्रभु प्राप्ति में, प्रभु के नाम में आसक्ति आती है, और दास्य रस जो है वो पुष्ट होता है। दास्य रस, आसक्ति। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि शुरू शुरू में तो बड़ी मेहनत लगती है, और उसके पश्चात जो है मेहनत उतनी नहीं लगती। अब आप खुद सोचिए, किसी की आसक्ति हो गई है प्रभु के नाम के प्रति, तो उसको कौन रोक सकता है प्रभु का नाम लेने से? जहां मन लगा होता है, जहां आसक्ति होती है, वहां तो व्यक्ति जो है वो पहुंच ही जाता है। आप खुद सोचिए आपकी आसक्ति कहाँ है? अगर आप माला लेके बैठे आपको नींद आ जाती है, पर वही आप मूवी देखने जाते हैं मॉल में, तो आपको कभी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मन लगा हुआ है, वहां मूवी देखने में आसक्ति है। तो यहाँ आसक्ति होती है, जहां मन लगता है ना, वहां पर फिर व्यक्ति की स्पीड बहुत बहुत फास्ट हो जाती है। और दास्य रस को पुष्ट करती है। देखिए एक तो दास्य रस होता है, हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं, और जब वो भगवान की पूजा करते हैं तो कैसे भगवान की सेवा करते हैं, तो कैसे भगवान की सेवा में वो तत्पर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जाओ हिमालय पर और संजीवनी बूटी लेके आओ, तो हनुमान जी कभी नहीं कहते कि कहां मैं रेस्ट कर रहा था, मैं आपका भक्त हूं, कभी तो आराम करने दिया करो, कहां मैं उड़कर अब समुद्र लांघ कर जाऊंगा, माता सीता की खोज करूंगा, कहां मैं हिमालय जाऊंगा, संजीवनी बूटी लाऊंगा, इतनी मेहनत मेरे से क्यों करा रहे हो? क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं, हर समय तैयार हैं हनुमान जी, हर समय, और पूजा सेवा कर रहे हैं। तो दास्य, देखिए दास्य रस जो है ना वो सभी भक्ति में, मतलब सबका प्राण है, ऐसा समझ लीजिए कि सभी रसों का प्राण है। अगर कोई किसी भी रस में भगवान की पूजा करता है तो उसमें दास्य रस आ ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यशोदा माता जो है वो वात्सल्य भाव में भगवान को बजती हैं, तो क्या वो भगवान की सेवा नहीं कर रही? कर रही है ना, वो भगवान को नहला रही हैं, दुला रही हैं, सुंदर वस्त्र पहना रही हैं, भगवान के लिए भोजन बना रही हैं, भगवान को भोजन खिला रही हैं, मक्खन बना रही हैं भगवान के लिए। भगवान वन को चले जाती हैं, उनके लिए वहां भोजन भेज रही हैं। भगवान जब वापिस आते हैं तो उनके पैर गंदे होते हैं, पैरों को धुलाती हैं, पैरों को दबाती भी हैं कि मेरे पुत्र के पैर जो है वो थक गए होंगे मेरे लाला के, क्या वो सेवा नहीं कर रही? तो दास्य वात्सल्य भाव में भी, वात्सल्य रस में भी एक तरह का दास्य रस है, दास्य भाव है, पर वो वात्सल्य वाला दास्य है, तो उस रस को भी पुष्ट करती है। और अगर कोई सखे रूप में भगवान को भजता है तो क्या उसमें दास्य भाव नहीं है? है। सखा क्या करते हैं? भगवान कृष्णा जा रहे होते हैं, उनको धूप लग रही होती है तो उनके सिर पर छत्र करते हैं, और भगवान को यमुना जल लाकर पिलाते हैं कि भगवान को प्यास लगी होगी। भगवान का भोजन आता है तो फटाफट से मधुमंगल जो है वो पेड़ पे चढ़ जाता है और पत्ते तोड़ लाता है और उसके डोना बनाता है, डूने जिसको बोलते हैं, और भगवान को बोलते हैं कि इसमें आप, मतलब भगवान का जो खाना है उसमें परोस देते हैं। तो क्या वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे? भगवान चलकर जाते हैं तो भगवान के चरण थक गए होंगे, तो सखा लोग जो है वो चरण भी दबाते हैं, तो वो भी सेवा कर रहे हैं। तो सख्य भाव में भी दास्य भाव आ जाता है, पर वो सख्य वाला दास्य है। दास्य भाव जो है वो सभी रसों का प्राण है, सभी में दास्य भाव आ जाता है। बिना दास्य के कोई भी रस जो है वो इतना पुष्ट नहीं होता, और ये दास्य रस जो है वो काल रात्रि माता की कृपा से मिलता है। देखिए इस लेवल पर आके ना शोक दूर हो जाता है, आपके जीवन में जितनी विघ्न बाधाएं जो आता है, काल रात्रि माता जो है ना वो उनका क्या करते हैं, भक्षण कर लेते हैं, हटाती नहीं है। देखिए हटाना तो, और पीछे हटाना, ये सब तो पीछे पीछे के स्तर पे रहता है। माता रानी तो भक्षण कर जाती है, कुछ भी नहीं बचता है उस समय। बाहर से हम तो बचते हैं पर अंदर से नहीं बचते हैं, इतना व्यक्ति जो है वो भगवान में जो है वो मगन हो जाता है। देखिए हम लोग उद्धव जी का नाम सुनते हैं, उद्धव जी भगवान की ना सुबह सुबह ही सेवा पूजा करना शुरू हो जाते थे बचपन से ही। तो क्या होता था, सुबह उठते ही भगवान की सेवा पूजा करनी शुरू कर देनी, और इतना बिजी हो जाना कि माता ने नाश्ते के लिए बुलाना वो आते नहीं थे। दोपहर हो जाती थी, माता रानी माता बुलाती रहती थी, आ जाओ आ जाओ, उनको याद ही नहीं रहता था उन्होंने खाना नहीं खाया, या उनको खाना खाना भी है उनको आवाज सुनाई नहीं देती थी। फिर तो माता रानी जाके खिला दे या ले आए, तो उस तरह की मेहनत करनी पड़ती थी, तो खुद से तो कभी भी नहीं आते थे। इतना व्यक्ति हाँ मतलब बिजी हो जाता है, जब खो जाता है आप समझे इस भाव तक, इस स्तर तक आते आते व्यक्ति जो है वो गुम हो जाता है भगवान की भक्ति में। तो काल रात्रि माता की कृपा से जो होता है, जिसमें माता हमारे शोक भय सब सबका नाश कर देती है, भक्षण कर देती है, विकराल से भूखा ना माता का, फिर कुछ नहीं बचता है, सिर्फ प्रभु और भक्त ही बचते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की स्थिति आ गई है तो आप समझे कि काल रात्रि माता की कृपा आप पर हो गई है। अब माता रानी का आठवां स्वरूप, आठवां नवरात्र में माता रानी के महागौरी स्वरूप की जो है वो पूजा की जाती है। महागौरी स्वरूप जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, माता रानी नंदी पर सवार हैं, माता रानी के वस्त्र सफेद हैं, और माता रानी का वरन गौरनी है, मतलब महागौरी, महागौर बहुत ज्यादा गौर है, और नंदी भी गोरे रंग के हैं, और माता रानी की साड़ी भी सफेद है। माता रानी के जो चार हाथ हैं उन हाथों में एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, और बाकी एक हाथ वरद मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए, और एक हाथ देते हुए मुद्रा में, और माता रानी को जो है वो नारियल की भेंट जो है वो अर्पित होती है। और माता रानी की कृपा से क्या होता है, माता रानी की कृपा से हर असंभव कार्य जो है वो संभव हो जाते हैं। और नब्धा भक्ति में आठवीं भक्ति कौन सी होती है, सख्य, सख्य भक्ति, सख्य रस। और प्रेम प्राप्ति का आठवां सोपान क्या है, भाव, भाव। तो माता रानी की कृपा से व्यक्ति को मतलब सख्य भक्ति, सख्य रस, और साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है, भाव प्राप्त होता है। देखिए माता रानी की कृपा से अभी हमने समझा कि असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, अब आप सोचिए असंभव कार्य संभव कैसे होते हैं, इसको समझिए। देखिए मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप एक जगह पे हैं तो आप दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। जहां आपने यहाँ बैठे बैठे सोचा कि आपके मायके में क्या हो रहा है तो आप वहां पहुंच नहीं जाएंगे, आप सोच जरूर सकते हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्या ब्यूटी है, सुनिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ब्यूटी ये है कि अगर आपके अंदर भाव आ गया और आपने यहाँ बैठे बैठे सोचा कि आप गोलोक वृंदावन में हो तो आप सच में गोलोक वृंदावन में हो, और अगर वो आपको उतना ज्यादा भाव आ गया तो आपको वहां की चीजें दिखना भी शुरू हो जाएंगी, और उसके पश्चात आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका मन है कि आप माता रानी और 56 भोग लगाएं, तो मटेरियली अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप भाव राज्य में जाइए, माता रानी को 56 क्या आप तो 108 तरह के माता रानी को भोग लगाइए, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, और माता रानी प्रकट में आपका भोग स्वीकार करेंगी। तभी कह रहे हैं कि असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, भाव राज्य जगत में आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जो रसिक होते हैं वो भाव राज्य में जिन बहुत बहुत कुछ करते हैं। एक बार एक प्रभु जी जो है वो, इसको मानसी सेवा भी बोलते हैं, वो मानसी सेवा में मगन थे, और क्या हुआ कि वो राधा रानी की पायल गुम होगी, वो तो मानसी सेवा कर रहे थे आंखें बंद करके बैठे थे, अब पायल गुम होगी तो उनको लगा कि वो पायल ढूंढ दें, तो वो पायल ढूंढने लगे। अब आसपास वाले लोगों ने देखा कि ये तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं मानसी सेवा से, तब गुरु जी को बताया गया, और गुरु जी ने ध्यान लगा के देखा तो गुरु जी को समझ में आ गई कि राधा रानी की पायल गुम हुई थी, ये पायल ढूंढ रहे होंगे। तो गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने ध्यान लगाया और वहां जाके राधा रानी के पायल ढूंढी और पायल दी भाव अवस्था में इनको, और जब इनको पायल मिली भाव अवस्था में तब गुरु जी तो वापिस आ गए, और इन्होंने वो पायल आगे दी और फिर ये भी वापिस आ गए। देखिए भाव राज्य की ब्यूटी देखिए कि व्यक्ति कहाँ बैठा है और कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी पॉसिबल है भाव राज्य में। तभी तो कहते हैं कि माता महागौरी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। देखिए सूरदास जी थे ना, वो वैसे वैसे तो आंखों से अंधे थे इसलिए उनका नाम सूरदास पड़ा था, पर जब वो भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते थे ना तो वो भगवान के जो श्रृंगार है उसको एक्सप्लेन करते थे, रोज वो भगवान के श्रृंगार को एक्सप्लेन करते थे, तो आलोचकों को ये पचता नहीं था ज्यादा, उनको हमेशा ये लगता था कि ये मंदिर के जो पुजारी हैं ये सूरदास से मिले हुए हैं, ये सूरदास को भगवान के श्रृंगार के बारे में पहले ही बता देते हैं, तभी सूरदास जी भगवान के श्रृंगार को वैसे ही बता देते हैं जैसे भगवान ने किया है। एक दिन क्या हुआ, सभी आलोचक जो है वो मंदिर चले गए। कहते आने दो आज सूरदास जी को, आज तो हम लोग पुजारियों को मौका ही नहीं देंगे कि वो भगवान की क्या भगवान ने पहना है वो सूरदास जी को बता सके। तो सूरदास जी आए, अब उन्होंने क्या किया, पुजारी क्या बताएंगे, उन्होंने भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए। और फिर सब खड़े हो गए कि देखते हैं आज सूरदास जी कैसे भगवान के स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन करते हैं। जब सूरदास जी आए और उनको बोला गया कि आप भगवान के स्वरूप का वर्णन करो, तो सूरदास जी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या वर्णन करें, फिर श्रृंगार तो है ही नहीं। तो सबने पूछा कि आप वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं, करिए करिए करिए, आज आपको पुजारियों ने बताया नहीं। तब सूरदास जी भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते हैं, हरि देखत मैं नंगम नंगा। तो जब इस तरह से श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो कि आज तो भगवान को मैं नंगा देख रहा हूं, तो सबको बड़ी हैरानी होती है। तो सच में वो भाव जगत में भगवान को देख पाते थे, भगवान की उनके साथ मतलब लीलाएं होती थी। देखिए लीला जो है वो चलती ही रहती है, भाव होना चाहिए, जहां भाव होता है वहां भगवान होते ही हैं। भगवान का क्या, भगवान तो बहुत सारे रूप बना लेते हैं और भगवान तो कहीं भी अप्रकट नहीं है, तो भाव होना चाहिए। सूरदास जी ने भगवान के उस रूप का भी वर्णन किया, तब सबको विश्वास हो गया कि इनको भगवान के दर्शन होते हैं। भाव जगत में कुछ भी हो सकता है, और वो उस भाव को पुष्ट, वो उस भाव सख्य भक्ति को पुष्ट जो है वो महागौरी माता करती हैं। सखे देखिए, एक तो सखे रस होता है ना, जो सखा भाव में भगवान को भजते हैं। एक सखे भाव होता है कि आपको एक सखा मिल जाता है, आपने अगर अपने मन की बात करनी है तो आप भगवान से कर सकते हैं। तो उस तरह का सखा भाव भगवान के साथ, आप उस तरह का मतलब अपनापन जो है वो फील करते हैं। तो अगर आपके जीवन में इस तरह के भाव आ रहे हैं तो आप समझिए कि माता महागौरी की कृपा आपके जीवन में हो गई है। अब माता रानी के नवा स्वरूप नवा नवराता, जिसमें माता रानी की सिद्धिदात्री स्वरूप की जो है वो पूजा होती है। माता रानी का स्वरूप देखिए, माता रानी जो है वो कमल पर विराजमान है, माता रानी का एक चरण नीचे है और एक चरण माता रानी ने मोड़ रखा है। माता रानी की चार भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कमल है। माता रानी को तिल का भोग जो है वो लगता है, क्या लगता है, तिल का भोग लगता है। और माता रानी की कृपा से क्या प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा से अमृतत्व जो है वो प्राप्त होता है, अमृत की प्राप्ति जो है वो होती है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और कुछ अनहोनी देखिए हो जाती है जीवन में। मतलब अब आप देखिए कि मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, अमृतत्व प्राप्त होता है, क्या मतलब इन सब चीजों का। देखिए नवता भक्ति में जो नौवीं भक्ति है वो है आत्मनिवेदन, और प्रेम प्राप्ति के 9 सोपान में जो अंतिम सोपान है वो है प्रेम। तो आत्मनिवेदन भक्ति जीवन में आती है और प्रेम व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्रकट होता है ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय अनहोनी भी हो जाती है कि माता जो है वो अमृत अमृतत्व प्रदान कर देती है। मतलब व्यक्ति की फिर मृत्यु नहीं होगी। देखिए यहाँ पर शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सिद्ध देह की। माता रानी सिद्धियां देती हैं, सिद्धिदात्री माता रानी का नाम है ना, तो बेसिकली देवता भी माता रानी के इसी स्वरूप की जो है वो पूजा करते हैं। माता रानी सिद्धि देती है, व्यक्ति को सिद्ध देह प्राप्त हो जाता है, और उस सिद्ध देह की जो है वो कभी भी मृत्यु नहीं होती। ये जो देह हमें मिला है ना, ये तो नश्वर है, देखिए इसकी मृत्यु तो होनी है, पर जब माता अनहोनी कर देती हैं, या कह सकते हैं अमृत देती हैं, तो वो सिद्ध देह देती हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती। कोई व्यक्ति पार्षद रूप में भगवान पार्षद देह में भगवान के पास पहुंच जाता है, कोई मंजरी देह में पहुंच जाता है, कोई सखी देह में पहुंच जाता है, कोई किंकरी भाव में पहुंच जाता है। तो इस तरह की आपको एक देह प्राप्त हो जाती है, बेसिकली आपका जो स्वरूप है ना वो आपको प्रकट हो जाता है। हम सबका एक तो ये शरीर है, एक हमारा स्वरूप है, एक हमारा शरीर है जो आध्यात्मिक जगत में है, जो हम भूल गए हैं, पर माता रानी की कृपा से हमें वो स्वरूप हमारा जो है वो जागृत हो जाता है, और वो अमर है, उसका नाश नहीं होता। तो फिर उस स्वरूप से हम लोग जीते हैं, और माता रानी की कृपा से वो स्वरूप जो है वो हमारा पुष्ट होता है। हम अपने स्वरूप में, अपने भाव में भगवान के साथ रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ है ना मटेरियल वर्ल्ड में, कितने रिश्ते हैं हमारे साथ, हम घर में रहते हैं, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, जिस तरह से हम लीलाएं करते हैं तो भगवान के घर में भी ऐसा ही होता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भगवान के घर में नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में भगवान के वहां से कुछ कम ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट रेप्लिका है, और भगवान ने वहीं से तो ये रिश्ते भेजे हैं, तो जो वहां है वही यहाँ है, यहाँ कुछ कम ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम जितने भी रिश्ते और जैसा यहाँ फील कर पाते हैं वैसा वहां भी है, बट हमें अभी नॉलेज नहीं है, माता रानी की कृपा से जो है वो हमें उन सारी चीजों की जो नॉलेज प्राप्त होगी, हमें अपने सिद्ध देह अपने स्वरूप का पता चलेगा। तो माता रानी के 9 स्वरूपों के बारे में हमने यहाँ पर सुना। हमें भी माता रानी से प्रेयर्स करनी है कि एक एक नवरात्र में माता रानी से प्रेयर्स करनी है कि हम शुरू से चलें श्रवण भक्ति से, श्रद्धा से, और धीरे 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 हम प्रेम प्राप्ति तक पहुंचे, आत्मनिवेदन भक्ति तक आए। माता रानी से रोज उनकी कृपा मांगिए, उनकी शक्ति मांगिए है। माता रानी हमें शक्ति दे ताकि हम प्रभु प्रेम की प्राप्ति कर सकें, और माता तो खुद ही शक्ति का स्वरूप है। माता रानी हमें वो शक्ति दे सकती हैं। हमें सीरियसली माता रानी से प्रेयर्स करनी है, माता रानी हमें शक्ति दीजिए ताकि हम प्रभु प्राप्ति जो है वो कर सके, हम सिद्ध देह तक पहुंच सके। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी।
जय माता दी। थैंक यू सो मच प्रीति भाभी, बहुत आनंद आ रहा था, है ना। तो माता रानी के आज 5 रूपों के बारे में हमें नॉलेज मिली। कल 4 पहले वाले फॉर्म्स के बारे में बात हुई थी दुर्गा माता की, और आज 5 फॉर्म्स के बारे में बात हुई। तो क्यों ना उसको कल रिकॉल भी कर लें जो डिवोटीज भूल गए। तो पहली फॉर्म शैलपुत्री माता, Day 1, है ना। और किसको रिप्रेजेंट करती है वो? श्रवण भक्ति को और साथ साथ में श्रद्धा को। और कौन सी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है? हमारी कमिटमेंट और हमारी डिटर्मिनेशन, राइट। और फिर सेकेंड डे, Day 2, ब्रह्मचारिणी माता, और वो करती है कीर्तन भक्ति को, भगवान का नाम जाप को, और साधु संघ को, सत्संग, ठीक है, और तपस्या, डिसिप्लिन, गुड कंडक्ट, इस पे ध्यान रखना है हमें ना। ये सारी वो क्वालिटीज हैं जो हमें माता रानी का स्वरूप याद करते हुए उनसे उस तरह की क्वालिटी को की गुजारिश करनी है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी आए, है ना। चंद्र घंटा माता, Day 3, स्मरण भक्ति, भजन क्रिया, स्मरण भक्ति साथ में भजन क्रिया, मतलब साधना में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, है ना। मैं भोग भी लगाऊंगा, मैं व्रत भी करूंगी, इस तरह से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा आपका। और क्या क्वालिटी? माइंड कंट्रोल और अलर्टनेस, और उनके बहुत सारे हाथ हैं, तो मल्टीटास्किंग इन डिवोशन, जैसे हमने कल प्रीति भाभी ने बताया था आपको कि ऐसे हम एक चीज कर पाते हैं और दूसरी चीज नहीं कर पाते, साइमल्टेनियसली आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे डिवोशन में चंद्र घंटा माता की कृपा से। Day 4, खुशमंडा माता, पाद सेवनम भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, इनकी माता की कृपा से क्या होगा? हमारे अंदर की यूजलेस अटैचमेंट्स बना रखी है हमने संसार से, बुरी आदतों से, अटैचमेंट से, वो सब नाश होना शुरू हो जाएगा, और लाइफ में ग्रोथ का आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक, ऑप्टिमिस्टिक रहना सीखेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद 5th डे पे स्कंद माता, अर्चना भक्ति और निष्ठा आ जाती है। और कितना बढ़िया एग्जाम्पल प्रीति भाभी ने दिया कि जब उनसे परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि पहुंचे भी, तो उन्होंने कहा भाई मुझे करोड़ों जन्म भी दोबारा तपस्या करनी पड़ेगी, शिव जी भी अगर मुझे मना करेंगे तब भी मैं रुकूंगी नहीं। दैट इज लाइक दृढ़ विश्वास, और वो निष्ठा तक हमें पहुंचना है, और इसके बाद सब कुछ डाउन हिल है। मतलब यहां से भक्ति का मार्ग बहुत सरल हो जाता है, जो भाभी ने एग्जाम्पल दिया, पहले चढ़ाई का मार्ग है मान लीजिए आधा, तो हम मैक्सिमम लोग जो कलयुग में हैं वो इससे जिससे पीछे होते हैं। मतलब इधर हम श्रद्धा पे हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं अगर हम श्रद्धा और साधु संघ तक भी पहुंच गए हैं, भजन क्रिया में आ गए तो और बहुत बढ़िया, नर्त निवृत्ति आ गई तो और हायर स्टेज है, अगर निष्ठा हो गई है आपको, ठीक है। तो आप में से अगर किसी को प्रचार करने का मौका दे रहे हैं भगवान, आपकी बात को भी सुनता है और आपके माध्यम से लोग बदल रहे हैं, राइट, ये तभी हो सकता है जब आपकी स्टेज निष्ठा पे आ गई है, अदरवाइज आप प्रचार नहीं कर पाओगे। प्रचार तभी होता है व्हेन यू आर वेरी 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 कन्विंस्ड अबाउट द पाथ, है ना। तो निष्ठा जो है माता रानी देती है हमें, स्कंद माता, और किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? करेज को, है ना, साहस को, और साथ साथ में करुणा का भाव, ठीक है। फिर इसके बाद Day 6 में कात्यायनी माता, है ना, किसको? वंदन भक्ति को, वंदना भक्ति को, और इनकी कृपा से हमें भक्ति मार्ग में क्या मिलती है? रुचि मिलती है, उत्तम रस आना शुरू हो जाता है हमें भक्ति में। इसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि भक्ति बोरिंग है, आपको संसारिक बातें बोरिंग लगेंगी, आपको भगवान की भक्ति में इतना मजा आ रहा होगा, और इसलिए बिकॉज मजा आना शुरू हो जाता है इसलिए रास्ता इसके बाद आसान हो जाता है। उससे पहले वाली स्टेजेस में बिकॉज मजा ही नहीं आ रहा होता, हमने सुना तो होता है इसमें आनंद है बट हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, यहां से आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। और आप कहोगे मेरे पास दुनियादारी के लिए टाइम नहीं है। और कात्यायनी माता का प्रीति भाभी ने बड़ा अच्छा बताया कि कैसे गोपियों ने भी कात्यायनी माता की क्या की थी? उपासना की थी ताकि भगवान श्री कृष्ण उनको पति रूप में मिल जाए, है ना। और कल्याणी माता कौन सी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है? शेयरिंग, जो बांटने का भाव हमारे अंदर है, हेल्दी रिलेशनशिप्स हम चाहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स, राइट? तो कल्याणी माता की कृपा से हेल्दी रिलेशनशिप्स मिलते हैं हमें। उसके बाद अगर हम आगे चलें डे 7 पे, तो काल रात्रि माता, वो दिखने में तो बहुत भयंकर उनका रूप है, पर वो भयंकर रूप एक्चुअली किसके लिए? राक्षसों के लिए और हमारे अंदर की इविल फोर्सेस के लिए है। वो भक्तों के लिए नहीं है, वो भक्तों के लिए तो उनकी करुणा है, और वो रिमूवर ऑफ क्या है, डार्कनेस के, जो हमारे अंदर एनिमीज है ना अज्ञान के, उसका नाश करने वाली माता है, और वो दास भक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और उनकी कृपा से आसक्ति हो जाती है भगवान के साथ, और वो इंट्रोस्पेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं ना, अपने अंदर के अंधकार के अंदर देख रहे हैं, हम अपनी कमियों को देखना शुरू कर देते हैं, है ना? तो जब आपको अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखना शुरू हो जाए, यू स्टार्ट रियलाइजिंग, नहीं मेरे में कितनी गलतियां हैं, मेरे अंदर कितनी, दैट इज अ वेरी गुड साइन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में सबसे बड़ा भेद क्या है? मटेरियल लाइफ में इट्स ऑल अबाउट ब्लेम गेम्स, बाकी सब दुनिया गलत है, और स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। तो काल रात्रि माता की कृपा से क्या क्वालिटी डेवलप होती है? इंट्रोस्पेक्शन की क्वालिटी भी डेवलप होती है। इसके बाद डे 8 पे महागौरी माता की कृपा से सख्य भावा, भगवान को सखा के रूप में देखते हो, यू फील लाइक कि सारे इमोशंस मैंने भगवान के साथ शेयर करने हैं, वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, राइट? और भाव आ जाता है आपको, जैसे भाभी ने आज बड़े सारे भाव जगत के एग्जाम्पल दिए। जो डिवोटीज हमारे साथ भी भगवती कृपा से ऐसे प्यारे प्यारे डिवोटीज होंगे जो भाव का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक आधा एग्जाम्पल देके बता सकते हैं क्या होता है भाव। भाव में आप भगवान की प्रेजेंस को फील कर रहे होते हो वहीं पे, राइट? तो यहाँ रहते रहते भी आप भगवान से कनेक्टेड हो, और आप अगर भगवान को भोग लगा रहे हो तो सच में ऐसा लग रहा होगा कि वो खा रहे हैं आपका खाना। इट्स अ वेरी हायर स्टेज। और महागौरी माता जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? क्वालिटी को, प्योरिटी को, शुद्धता को, ज्ञान को, सद्बुद्धि को, विजडम को, है ना? और 9th सिद्धिदात्री देवी जो है माता रानी, आत्मनिवेदन, जब सब कुछ आपने सर्वस्व भगवान के लिए बिल्कुल टोटली डेडिकेशन, टोटल सरेंडर, जिसने जो जिसके आचार्य कौन है? बलि जी, वो बलि महाराज है, वो आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य है, सब कुछ दे दिया उन्होंने, अपना कुछ भी नहीं रखा अपने लिए, राइट? टोटल सरेंडर और प्रेमा भक्ति जो है, ये स्टेज आ जाती है सिद्धिदात्री माता की कृपा से। और किसको रिप्रेजेंट करती है, किस क्वालिटी को? परफेक्शन, सक्सेस, अकम्प्लिशमेंट, एंड जो डिजायर होती है, एक मुझे हमेशा इंप्रूव होते रहना, मैं बहुत कम हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, और ये सारी डायरेक्शन क्या है इसकी? क्या ये मटेरियल लाइफ की बात हो रही है या स्पिरिचुअल लाइफ की बात हो रही है? देखिए, अगर आपका भाव मटेरियल लाइफ की प्रोग्रेस होगा ना, और अगर आप माता रानी से जुड़ोगे या भगवान की से, तो आपको वो भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा। बट सत्संग में आपको तत्व हम बताना चाहते हैं कि उसमें आप समझदार नहीं हो, क्योंकि फिर जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे। फिर अगर आप माता रानी से जुड़ोगे, सिद्धिदात्री माता से या महागौरी माता से, किसी से भी उपासना करोगे, लेकिन संसार मांगोगे, तो आप समझदार नहीं हो। बिकॉज अल्टीमेटली संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, आपको मिल भी जाएगी थोड़ी देर की सक्सेस, लेकिन फिर आप अल्टीमेटली फेल ही होने वाले, बिकॉज फिर दोबारा जन्म मृत्यु। तो यहाँ पे हमें तत्व को समझ के क्या मांगना है माता रानी से? परफेक्शन इन द पाथ ऑफ प्योर लव, भगवान के प्रेमा भक्ति के रास्ते में हमें परफेक्शन चाहिए, अकम्प्लिशमेंट्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, अनुभूतियां, सक्सेस। हमारी सक्सेस की परिभाषा प्रभु का प्रेम होना चाहिए, और अ स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मुझे हर समय, जो भी आज मैं हूं, आज जो मैं भक्ति कर रहा हूं, कल मेरी भक्ति आज की भक्ति से बेटर हो जाए, है ना? तो आइए सब मिलके माता रानी के 9 रूपों से ये विनती करते हैं कि हमें क्या हो, प्रेमा भक्ति तक पहुंचाए माता रानी, है ना? आत्मनिवेदन भक्ति मिले, और ये सारी क्वालिटीज का हमारे अंदर क्या हो, विकास हो, हमें कमिटमेंट आए, हम डिटर्मिंड हो, हम तप करें, डिसिप्लिन रहें, माइंड को कंट्रोल करना सीखें, अलर्ट रहें, डिवोशन के साथ साथ मल्टीटास्किंग करना सीखें, पॉजिटिव आउटलुक रखें, करेज हो हमारे जीवन में, कंपैशनेट हो हम, शेयरिंग का भाव हो, रिलेशनशिप्स हेल्दी हो, हमारे अंदर की इग्नोरेंस का नाश हो, और इंट्रोस्पेक्टिव बन जाएं हम लोग, प्योर हो, नॉलेजेबल हो, वाइज हो, और परफेक्शन की तरह हमेशा स्ट्राइव करें, है ना? देखिए, नवरात्रों से जुड़ी हुई कथा है, आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक असुर था, महिषासुर, ठीक है? तो तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। और आपको पता है जो असुर लोग होते हैं, जब वो भगवान के किसी रूप को खुश करते भी हैं तो उल्टी सीधी चीजें ही मांगते हैं, तो मैं अमर हो जाऊं। और उनकी इंटेंशन क्या होती है, असुर है ना वो, कि अगर मैं अमर हो जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, लोगों को परेशान करूंगा, मैं पावर को एक्सप्लॉइट करूंगा। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं मैं अमर हो जाऊं, ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है, अमरता का वरदान तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो ये फिर ट्रिक लगाते हैं असुर लोग, ठीक है, जैसे हिरण्यकश्यपु ने भी ट्रिक लगाया था कि मैं दिन को ना मरूं ना रात को मरूं, वैसे ही इसने क्या किया, महिषासुर ने ट्रिक लगाया, कि ये सोचते हैं मेरा हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम भगवान को मूर्ख बना लेंगे। मैं ना अगर मरूं तो खाली फीमेल से मरूं, अंदर से सोच रहा है मेरे को फीमेल कैसे मार सकती, फीमेल तो बड़ी कमजोर होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा तथास्तु ब्रह्मा जी ने, उसके बाद आपको पता ही है इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया महिषासुर ने, और इसके आतंक से परेशान होकर एक बार सारे देवता इकट्ठे हुए त्रिमूर्ति के साथ, भगवान विष्णु शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता मिलके सबने अपने अपने शरीर से एक तेज निकाला, ब्लेसिंग से एक शक्ति, सारी देवताओं की जो शक्ति इकट्ठी हुई तो वो क्या बन गई, वो बन गई आदि शक्ति माता दुर्गा, है ना। और फिर दुर्गा माता ने जाके क्या किया, महिषासुर से संग्राम हुआ, और ये जो 9 नवरात्र हैं ये इसमें संग्राम चल रहा है उनका, ठीक है। और 10th डे पे कब हुआ उनका वध, महिषासुर मर्दिनी इसलिए उनका नाम पड़ा ना, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया विजयदशमी पे, ठीक है। तो अब देखिए ये नवरात्रों में क्या हो रहा है, महिषासुर क्या रिप्रेजेंट करता है, जब भी हमारे शास्त्रों में या पौराणिक कथाओं में कोई राक्षसों की बात आए तो आपने समझना है वो एक सिंबल है किस चीज का, हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति का। क्या है राक्षसी प्रवृत्ति हम सबके अंदर, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस, ये निंदा करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, शोषण करने की टेंडेंसी, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं, है ना। और माता रानी अल्टीमेटली क्या किया, वध कर दिया उस महिषासुर का। तो हमसे माता रानी से क्या मानना है, कि जैसे आपने महिषासुर का वध किया वैसे ही हमें भी शक्ति प्रदान करो, और ये 9 नाइट्स हमें ये प्रण लेना है, जैसे माता रानी ने क्या किया, संघर्ष किया उस, क्या किया, उस राक्षस को मारने के लिए एक युद्ध हुआ, संघर्ष चल रहा है। तो प्रेरणा क्या बन रही है कि माता रानी के साथ जुड़ के हमें क्या करना है, हमारे अंतकरण में छुपे हुए बहुत सारे राक्षसों के साथ हमें संघर्ष करना है, चाहे वो राक्षस किसी भी नेगेटिव इमोशन का हो, ईर्ष्या का हो, वासना का हो, क्रोध का हो, है ना। तो ये जो 9 नाइट्स हैं, हमें माता रानी से ये मांगना है कि हम अपने अंदर के राक्षसों को पहचान के उनका आपकी कृपा से वध कर सके, ताकि विजयदशमी दिन के दिन तक हम उन राक्षसों का वध कर सके। और इसलिए हमारे कल्चर में अलग अलग समय में से फेस्टिवल्स बनाए गए हैं, ताकि इसके एक दिन से बहुत सारे निशाने होते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे निशाने मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्या क्या होता है। देखिए पहले तो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, बिकॉज अब जो फेस्टिवल आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 9 डेज का, इसमें हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए हमारे किसी भी वैदिक फेस्टिवल में, सबको हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम भगवान के रास्ते में और आगे कैसे बढ़े। तो हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। और इसीलिए हमने नवरात्रों की शुरुआत में ही आपको माता रानी की कथाओं का भी श्रवण करवाया, और हर एक नवरात्रे पे इस बार कल से माता रानी के हर एक रूप की कथा भी हुआ करेगी। तो सत्संग का श्रवण करो, जितना हो सके भगवान की कथाओं का श्रवण करो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, तो नहीं बड़े इंपॉर्टेंट है, साधना, जितना हो सके हमें भगवान का नाम जाप बढ़ाना है ना। जो भी अभी तक आप नाम जाप कर रहे हो, डू नॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूज मत हो जाओ, ये नाम जाप वो नाम, जो भी नाम जाप करते हो ना आप, आपके गुरु जी ने कहा है राम राम करो, आप हरे कृष्णा कर रहे हो, आप माता रानी का करते हो, आप ओम नमः शिवाय करते हो, जो भी आप जाप करते हो उस जाप को बढ़ाइए इस समय में, बिकॉज ये जो नवरात्रों का टाइम चल रहा है, कॉस्मिक एनर्जी ऐसी होती है कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और क्या करना है हमें, साधना में नाम जाप बढ़ाने के साथ साथ हमें उपवास रखने हैं अपनी अपनी फिजिकल कैपेसिटी को समझते हुए, ठीक। उपवास का मेन पर्पस भगवान के नजदीक जाना होता है, लेकिन साथ में भगवान के नजदीक जाने के लिए क्या सहायक होता है कि हम कम खाएं या कुछ दिन ना खाएं? बिल्कुल सहायक होता है, बिकॉज हम कम खाते हैं या हम फलाहार पे रहते हैं या बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक तो होता ना भोग विलास के लिए खा रहे हो, ये वाली चटनी देना, जरा डोसा खाना है मुझे, वो बड़ा बड़ी चीज बड़ी स्वाद लगती है, स्वाद के लिए खा रहे हैं हम। उसका त्याग करके क्या करें, सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना ही, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी फ्री रहे। फिजिकली तो डिटॉक्सिफिकेशन हो ही जाएगी, लेकिन क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो हम किस में लगा सकते हैं, अपने सत्संग और साधना में। ठीक है, तो हरि नाम बढ़ाइए, नाम जाप कीजिए खूब सारा, और क्या कीजिए, व्रतों का पालन कीजिए, कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिए कि अपनी डिवोशनल, देखो एक तो रूटीन में आप डिवोशन कर ही रहे हो, इसके अलावा भी आपको कुछ संकल्प लेने चाहिए। ठीक है, तो जो तो डिवोटीज रेगुलरली गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, उनके संकल्प थोड़े अब स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बिकॉज जो गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हुए आप डिवोटीज हो, आप पे तो विशेष कृपा हो चुकी है, आप रेगुलर सत्संग भी लगा रहे हो, हरिनाम भी कर रहे हो, ठीक है, भोग भी लगा रहे हो, तो आप लोग और उसमें एडवांसमेंट करो। जैसे मैं कल से संकल्प लिया है, मैंने आज आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी संकल्प क्या लेना चाहते हो नवरात्रों में जरूर लिख के बताइए। मैं 9 डेज पे 1 मील अ डे पे रहूंगा, और मैं और ज्यादा एनर्जी से भगवान की सेवा करने की कोशिश करूंगा, हर एक सत्संग की क्वालिटी को और अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे, और हम कैसे जागरूकता लाएं ईश्वर के प्रति, लोग जागे, उनका प्रेम बढ़े, उस तरह की मैं प्रेयर्स भी करूंगा और उस तरह की और आइडियाज के बारे में सोचने की कोशिश करूंगा। ये कुछ बातें, और जो कुछ समय मैं थोड़ा बहुत वेस्ट करता हूँ, हर एक इंसान को अपनी देखिए हालात पता होती है, मुझे भी पता है कि लाइक जहां मैं था वहां के कंपैरिजन में तो मैं कुछ नहीं टाइम वेस्ट करता, बट फिर भी मुझे पता है कि अभी भी मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ, तो वो टाइम वेस्टेज को मैं और कम करके मिनिमम पे लाने की कोशिश करूंगा, और उसको मैं एक एक मिनट को यूटिलाइज करके प्रभु की सेवा करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने संकल्प ले लिया नवरात्रों में, तो मान लीजिए आप भी इसी तरह से कोई संकल्प लो। ठीक है, एक तो रूटीन की स्पिरिचुअल लाइफ होती है, और एक होती है हमारे फेस्टिवल्स के दिन में, एकादशी के व्रत के दिन में, नवरात्रों में, अब आने वाले समय कार्तिक मास आएगा, हमें थोड़ा थोड़ा, देखो अगर आप थोड़ा थोड़ा संकल्प लेके आगे बढ़ने की नहीं कोशिश करोगे तो फिर माया क्या करती है, वो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के आपको पीछे ले जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, हमें पीछे नहीं जाना है अब। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप संकल्प, जो डिवोटीज अब गोलक एक्सप्रेस से नहीं जुड़े हैं या कभी कभी लाइव देख लेते हैं, अभी इतना उनके भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे संकल्प लें? भाई कम से कम ये संकल्प ले लो कि आप सात्विक आहार लोगे, कम से कम इन 9 डेज पे आप भोग लगाने की प्रैक्टिस शुरू करोगे, एटलीस्ट फॉर 9 डेज आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे, आप ईटिंग आउट नहीं करोगे, ठीक है, आप फ्रूट इंटेक करोगे, हो सकता है तो एक मील स्किप कर दोगे, आप इंटॉक्सिकेशन में फंसे हो या चाय वगैरह पीते हो या कॉफी लेते हो, तो वो चीज को अपने जीवन से बाहर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और क्या नहीं करना है, हमने संकल्प ले लीजिए कि हम बिल्कुल निंदा चुगली नहीं करेंगे, एटलीस्ट इन 9 डेज पे किसी के बारे में बुरा विचार नहीं रखेंगे, और आप ये भी संकल्प ले सकते हो कि किसी के साथ आपने बहुत सालों से ग्रज बना रखा है या किसी के बारे में जजमेंटल बिहेवियर है आपका और सोचते रहते हो, वो बिहेवियर को छोड़ देंगे हम। ठीक है, एक संकल्प लेना है आपने, एक नेगेटिव इमोशन आपको, और आप रियलाइज नहीं करते हो आप कितने फिजिकली अनवेल रह रहे हो आजकल सोसाइटी, और लोगों को लग रहा है आप फिजिकली बीमार हो, इसलिए आप फिजिकली बीमार नहीं हो, आप मेंटली बीमार हो, बिकॉज आपने किसी ना किसी के बारे में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रखे हैं, और उसको नहीं नुकसान पहुंच रहा, उससे किसको पहुंच रहा है, वो जो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती रहती है ना, वो जो आपने अंदर ताने बाने बुन रखे हैं ना लोगों के लिए, इमोशंस हैं आपके नेगेटिव, उसका त्याग कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एक संकल्प, सब कुछ तो आप एक साथ नहीं कर पाओ, कोई एक संकल्प लेने की कोशिश कीजिए, है ना, जिससे आप भगवान के रास्ते में और आगे बढ़ो, और मेन फोकस सेल्फ प्योरिफिकेशन होना चाहिए हमारा, कम बात कीजिए इन दिनों पे, ज्यादा बातें नहीं, बात करनी भी है तो भगवान के गुणगान की, भगवान का भजन गाने वाली, या किसी को भगवान के बारे में बताने की, कोई फर्क, बिल्कुल ड्यूटी की तरह, ड्यूटी के लिए जितनी बात की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा नहीं, है ना, इस तरह का संकल्प भी कर सकते हो। सेवा में क्या कर सकते हो आप, प्लीज मेक श्योर कि आप कोई ना कोई सेवा करो, कोई भी वैदिक फेस्टिवल आता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तन मन धन से सेवा को बढ़ाएं, है ना, फाइनेंशियली जो भी कर सकते हो आप, स्पेशली इस समय पे देखिए जो कन्या पूजा है उसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो ये यू नो स्त्री शक्ति है ना, इस समय चल रहा है वो टाइम। तो मान लीजिए अगर आपके घर में कोई लेडी आती है, उनकी वो गरीब है, उनकी बेटी है छोटी, उस अगर आप उसकी स्कूलिंग को स्पॉन्सर कर सकते हो, चलो पूरे जिंदगी के लिए नहीं तो मे बी 1 साल के लिए, चलो 1 साल के लिए नहीं तो 1 महीने के लिए आप उसकी किताबों को स्पॉन्सर कर दो, ठीक है। कोई अगर एक इंस्टीट्यूट है जिसमें अनाथ बच्चियां हैं, आप जाके उनकी हेल्प करके आ जाओ, कुछ इस तरह का इंट्रोड्यूस करो जहां पे आप सेवा कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल था। आप कोई ना कोई सेवा जरूर करो, तन से भी करो, मन से भी करो, धन से भी करो। ऐसा नहीं कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम, नहीं, हर एक इंडिविजुअल का जो भी है अपने उसके हिसाब से, 5 रुपए है, 10 रुपए है, भैया उसके हिसाब से सेवा करो, बट करो जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी शुद्धि के लिए। तन मन धन तीनों से हमें दान भी करना चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम कि हम कुछ दान भी करें और सदाचार पे भी अपने ध्यान दें और स्ट्रिक्ट हो जाएं कि हम लोगों के बारे में कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। ये टाइम इंट्रोस्पेक्शन का है, डीपली अंदर जाने का है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो फेस्टिवल्स है ना उसमें शोर शराबा एक्सटर्नल चीजों में बहुत ज्यादा हम घुस जाते हैं, लेकिन हम उसकी इंटर, जैसे कपड़े खरीदना, क्या खाना बनाना है, क्या पार्टी करनी है, हम उस तरह की चीजों में चले जाते हैं ज्यादा, बट उसकी डीप आध्यात्मिक मीनिंग क्या है उसको हमने, उस एसेंस को लूज कर दिया है। तो इन सत्संग के माध्यम में हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेन वेदिक फेस्टिवल्स का मेन पर्पस होता है सेल्फ प्योरिफिकेशन, वर्ल्डली लाइफ से डिटैचमेंट एंड भगवान से अटैचमेंट, और उन एक्टिविटीज को बढ़ाना जैसे सत्संग साधना सेवा को जो भगवान से जोड़े, उन एक्टिविटीज को घटाना जो हमें भगवान के रास्ते से भटकाती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो, मैंने कुछ आइडियाज दिए। आपके पास भी कोई प्यारे प्यारे आइडियाज हैं जो आप करते हो जिससे आपको हेल्प हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में बाकी डिवोटीज के लिए भी वो शेयर कर सकते हो। तो आई होप इस बार का नवरात्रि आप सबके लिए मंगलमय रहे और माता रानी की विशेष कृपा हम सब पे बनी रहे, और आप सब जरूर क्या क्या संकल्प ले रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं कानपुर और रेणु जी के भाव जानते हैं। हरी बोल रेणु जी, जय माता दी।
जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जैसा कि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रों का आरंभ हो जाएगा, और मैंने भी इस उपलक्ष्य में दुर्गा माता के ऊपर जो है वो कुछ लाइनें लिखी हैं जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मैं अपनी कविता आप सबके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद जो मेरे संकल्प है वो भी मैं आप सबके साथ साझा करूंगी। हरी हरी बोल जी। आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी, आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी, जय 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 माँ शेरों वाली। दैत्य राज का अंत करने, दैत्य राज का अंत करने, शेर सवार चली जगदम्बा। दिव्य तेज से देह निर्माण हुआ, दिव्य तेज से देह निर्माण हुआ, देकर अपनी अपनी शक्तियां सबने दिव्य कन्या रूप साकार किया, दिव्य कन्या रूप साकार किया। दुर्गम का विनाश करके, दुर्गम का विनाश करके दुर्गा माता का गुणगान हुआ। दुर्गे समृता हर्षि भीतिम शेष जंतो, स्वस्थे समृता मतीम मतीम शुभाम ददासी। दरिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वो उपकार करनाए सदार्द चित्ता। मधु कैटप का वध करके देवताओं को अभय वरदान दिया, मधु कैटप का वध करके देवताओं को अभय वरदान दिया। आतंक मचा महिषासुर का तो उसका भी संहार किया। लेकर रूप माँ काली का, लेकर रूप माँ काली का रक्त बीज का रक्त पिया। शुंभ निशुंभ के प्राणों को हर देवों को भयमुक्त किया, देवों को भयमुक्त किया। शारदीय नवरात्रों का है आरंभ हुआ, शारदीय नवरात्रों का है आरंभ हुआ। नौ रूपों के दर्शन करने को देखो सब आतुर है खड़े। घर में माँ का आगमन हुआ, घर में माँ का आगमन हुआ। घृत दीपों से माँ का स्वागत हुआ। 9 दिन की पूजा करके दिव्य वरदान सब पाते हैं, 9 दिन की पूजा करके दिव्य वरदान सब पाते हैं। अंत में करके कंजक पूजा, अंत में करके कंजक पूजा, अपने भाग्य जगाते हैं।
सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति संविते भेव्यास्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सब भय से है रक्षा करती, सब भय से है रक्षा करती, ऐसी ही है दिव्य रूपा दुर्गा देवी। जिनके दर्शन की खातिर घंटों खड़े होते हैं कतारों में, जिनके दर्शन की खातिर घंटों खड़े होते हैं कतारों में, ना धूप दिखे ना बारिश देखे, ना धूप दिखे ना बारिश देखे, बस दर्शन की आस लिए आते हैं माँ के द्वारे में, आते हैं माँ के द्वारे में। भूल तो नहीं गए हम सब, भूल तो नहीं गए हम सब, जिसके दर्शन को तरसे हैं वो देवी रूप में एक कन्या है, वो देवी रूप में एक कन्या है। बेटे की चाह में मानुष, बेटे की चाह में मानुष, लड़की को अभिशाप है माने, जन्म से पहले ही मार दी जाती, जन्म से पहले ही मार दी जाती, कुत्ते बिल्लियों के आगे खाने को फेंक दी जाती। कहीं दहेज की आग में जलती, कहीं दहेज की आग में जलती, कहीं रस्सियों से लटकाई जाती। औरत तो माँ बहन पत्नी बेटी बन बस स्नेह ही बरसाती है। नौ दिन के इस उत्सव में, नौ दिन के इस उत्सव में माँ दुर्गा से आशीष ये मांगे, संकल्प करें सब मिलकर हम, संकल्प करें सब मिलकर हम, जब भी घरों में जन्मे लड़की, जब भी घरों में जन्मे लड़की, सबके चेहरे खिले रहे जो माँ की शरण में आते हैं, जो माँ की शरण में आते हैं, भय बाधा दुख से दूर हो जाते हैं, भय बाधा दुख से दूर हो जाते हैं। सर्व बाधा प्रसम्मनम त्रैलोक्या शिखिलेश्वरी एव मेम त्वया कार्यम स्मद वैरी विनाशनम। हरी हरि बोल जी। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह रूपी नेगेटिविटीज है उनका नाश करे, और हम लोग अपनी गृहस्थी को संभालते हुए हमेशा जो है वो अपनी साधना को बढ़ा पाए और हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सके, निष्ठा पूर्वक हम प्रभु की भक्ति कर सके। और जैसा कि प्रीति जी ने भी बताया, अभी भैया ने भी बताया कि जो दास भक्ति का, जो नवदा भक्ति का एक प्रकार दास्यम भक्ति, उसमें जो जैसे नौ भक्ति के प्रकारों में दास्यम भक्ति का जो भाव होता है वो होता है, तो हमारे अंदर भी जो है ये भाव विकसित रहे हमेशा, यही मेरा जो है वो माता रानी से प्रार्थना है। और हम जो है वो अपनी कमियों को देख पाए और अपनी कमियों को देखते हुए उनमें इम्प्रूवमेंट ला पाए और हमारे अंदर समर्पण का भी जो है वो भाव विकसित हो। और मेनली जो सबसे बड़ी बात मैं माता रानी से मांगना चाहूंगी कि वो हमें जो है वो अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति दे और भक्ति मार्ग पे हम इसी तरह आगे बढ़ते चले। और जैसे संकल्प की बात आई तो मैं भी जो है वो संकल्प लेना चाहूंगी। मेरा संकल्प ये है कि जैसे मैं माला करती हूँ तो अपनी माला को जो रूटीन से करती हूँ उससे मैं कुछ माला जो है वो ज्यादा करूंगी। और जैसे 9 दिन का नवरात्रे का उत्सव है तो 9 दिन मैं भी फलाहार पे रहूंगी और अपने जितने भी नेगेटिविटीज हैं विकारों को दूर करने की कोशिश करूंगी और हर समय प्रभु का नाम लेने की कोशिश करूंगी। और सात्विक भोजन जो है वो जैसे फलाहार पे रहूंगी लेकिन फैमिली में भी सात्विक भोजन जो है वो सबको बना के खिलाऊंगी। तो यही मेरा संकल्प है और सभी डिवोटीज से भी ये माता रानी के लिए प्रेयर करूंगी कि हर कोई जो है वो प्रभु भक्ति के आगे रास्ते पे आगे बढ़ते चले। इसी के साथ, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।
थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत आनंद आया, कविता भी बहुत प्यारी थी और आपका संकल्प में आपको भगवान सक्सेस दे। इनफैक्ट माता रानी हम सब पे कृपा बरसाएं। जितने भी डिवोटीज कोई संकल्प लेना चाहते हैं वो लिख रहे हैं, माता रानी सबके संकल्पों को पूरी करे, हम सब प्रभु प्रेम के इस रास्ते में आगे बढ़ चढ़ के खुद भी चलें और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकें और सब लोग अपने अपने विकारों को पहचाने और माता रानी की शक्ति से उसका वध कर सकें। देखिए मैंने एक कहा था ना, दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है। देखिए एक तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है लेकिन हमारा वैदिक सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है कि एक तरह से कितने निशानी हो जाते हैं। देखिए शारदीय नवरात्रि है तो गर्मियां खत्म होके हम कहाँ जा रहे हैं, सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चैत्र नवरात्रि में बसंत ऋतु, तो सर्दियों के बाद आप गर्मियों की तरफ आ रहे हो। सीजनल चेंजेस होते हैं और उसमें बहुत सारी बीमारियां लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो व्रतों का सिस्टम बनाया गया, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहता है कि जो आपका थोड़ा सा अगर आप लेस ईटिंग पे रहते हो, फलाहार करते हो, उससे क्या होता है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो। ठीक है। और देखिए ओवर ईटिंग की वजह से जो ओबेसिटी का इश्यू है, जो जिससे फिर अल्टीमेटली मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, राइट, सारी बीमारियां वहां से पैदा होती है। तो आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह की बातें हो रही है ना, अगर आप हमारे वैदिक सिस्टम को समझोगे तो कब से समझाया गया ये, करोड़ों सालों से, जब से चल रहा है तब से बताया गया है कि रेगुलरली हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर लेना चाहिए, बॉडी लेवल डिटॉक्स कर लेना चाहिए। बट मजेदार बात क्या है हमारी वैदिक सिस्टम की, ये गोरों के सिस्टम में खाली फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की बात, यहाँ पे फिजिकल डिटॉक्स के साथ साथ मेंटल डिटॉक्स और स्पिरिचुअल लेवल की एनहांसमेंट की बात होती है। एक चीज से देखो कितने निशाने, भगवान के करीब भी जाओ, मानसिक रोगों से भी बाहर निकलो, फिजिकली भी हेल्दी हो जाओ। तो कितना प्यारा हमारा सिस्टम है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। चलिए अब मनिका जी के पास चलते हैं चंडीगढ़, उनके भाव सुनते हैं। जय माता दी मनिका जी, हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो आज बहुत ही आनंद आया और थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस को और भगवान श्री हरि को, माता रानी जी को, कि उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से इतना प्यारा सत्संग आज ऑर्गेनाइज हुआ। और जैसे कल भी हमने चार देवियों की ना महात्म को सुना था और आज रेस्ट ऑफ द फाइव को सुना और बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच निखिल जी। और मुझे पर्सनली एक बात जो मैंने ये सीखी है कि आपने जो कालरात्रि माता जी के बारे में बताया, इट्स इट्स ब्लैक बिकॉज ऑफ आर इवल्स, है ना। तो हमें अपने इविल्स को आइडेंटिफाई करना है और मैं ये चाहूंगी कि मैं भी नोट डाउन करूं और हर रोज एक इविल को इरेडिकेट करने की कोशिश करूं अपने अंदर से। और गॉसिप नहीं करूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी और जितना जरूरत होगी इन नवरात्रों में उतना ही बोलूंगी। अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करूंगी ताकि मैं ज्यादा हरी नाम कर सकूं। तो बहुत मजा आया और बहुत हमारा वैदिक कल्चर कितना रिच है। हमेशा ही गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हमें हर एक फेस्टिवल का महात्म का समझ आता है एंड वी कैन चेरिश इट ऑल्सो। तो आज मैं भगवान श्री हरि की कृपा से आपको देवी कवच सुनाने जा रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माता दी। ओम चंडिका देवी माता नमने मेरा स्वीकार करो, परम सिद्ध है कवच तुम्हारा, तुम सबका उद्धार करो। शुभ पावन नौ रूप तुम्हारे, पहला शैल पुत्री रूप, ब्रह्मचारिणी रूप है दूजा, तीजा चंद्रघटा देवी, चौथा रूप कूष्मांडा देवी, पांच वह स्कंद माता का, छठा रूप देवी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि आभा, आठवा रूप महागौरी है, नौवा रूप सिद्धिदात्री परम। ये सब नाम देत भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। अग्नि जला नहीं सकती है और शस्त्र भी मार नहीं पाए, भय से आतुर हो जो प्राणी, शरण तुम्हारी आ जा। संकट कोई पास ना आए, शोक दुख भय व्याप्त ना हो, भक्ति भाव से याद करे जो तुम, उसका कल्याण करो। चिंतन करते हैं जो तुम्हारा, उन
उनकी रक्षा करती हो, भक्तों का हित करने को तुम रूप हजारों धरती हो। प्रेतारूढ़ तुम्ही चामुंडा, महिषारूढ़ वराही तुम्ही, गजारूढ़ तुम इंद्री देवी, वैष्णवी गरुड़ासना तुम्ही। माहेश्वरी वृषभारूढ़ा, मयूर वाहन कोमारी, शरणागत रक्षक तुम माता, गुण गाए दुनिया सारी। हंसारूढ़ ब्रह्माणी देवी, सब आभूषण धारी हो, सर्व शक्ति दात्री तुम माता, जय जय कार्य तुम्हारी हो। विष्णु प्रियतमा लक्ष्मी देवी, कमला आसन पर वास करो, तुम्ही ईश्वरी देवी माता, श्वेतांबरी स्वरूपा हो। नाना रूप तुम्हारे माता, नाना अस्त्र शस्त्रधारी, नाना रत्नों से हो सुशोभित, शोभा है सबसे न्यारी। भक्तों की रक्षा करने को हर स्वरूप है क्रोध भरा, यथारूढ़ महाशक्ति माता हो तुम हर आयुध मया। दैत्यों का वध करने वाली, अभेदान दो भक्तों को, महारौद्र महादेवी माता, देवों का कल्याण करो। तुमको नमस्कार है माता, महाप्राक्रम धारी हो, तुम्हें देखना कठिन है माता, रक्षक तुम्ही हमारी हो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, सदा करे रक्षा मेरी, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, सदा करे रक्षा मेरी। दक्षिण दिशा में वाराही, सदा करे रक्षा मेरी, नेतृत्व कोण में खड़ग धारिणी, सदा करे रक्षा मेरी। पश्चिम दिशा में वारुणी देवी, सदा करे रक्षा मेरी, वायवक कोण में मृग्या देवी, सदा करे रक्षा मेरी। उत्तर में देवी कौमारी, सदा करे रक्षा मेरी, ईशान कोण में शूल धारिणी, सदा करे रक्षा मेरी। नभ की ओर से माँ ब्रह्माणी, सदा करे रक्षा मेरी, कल के भाग से वैष्णवी देवी, सदा करे रक्षा मेरी। दसों दिशाओं में चामुंडा, सदा करे रक्षा मेरी, आगे जया पीछे से विजया, सदा करे रक्षा मेरी। वाम भाग में अजिता देवी, सदा करे रक्षा मेरी, दक्षिण में अपराजिता देवी, सदा करे रक्षा मेरी। ललाट रक्षक मालाधारी, सदा करे रक्षा मेरी, यशस्वनी भौहों पे विराजे, सदा करे रक्षा मेरी। मध्य ललाट त्रिनेत्रा देवी, सदा करे रक्षा मेरी, नथुनों की यम घंटा माता, सदा करे रक्षा मेरी। मध्य भाग नेत्रों की शंखिनी, सदा करे रक्षा मेरी, कपोल काली का कान शंकरी, सदा करे रक्षा मेरी। सुगंध नासिका होट चर्चिका, सदा करे रक्षा मेरी, सरस्वती देवी जी बाकी, सदा करे रक्षा मेरी। चंडिका देवी कंठ कंठ की, सदा करे रक्षा मेरी, गले की श्री चित्र घंटा देवी, सदा सदा करे रक्षा मेरी। तालों की महामाया देवी सदा करे रक्षा मेरी। कामाक्षी देवी ठोड़ी की सदा करे रक्षा मेरी। सर्व मंगला शुभ वाणी की सदा करे रक्षा मेरी। भद्रकाली माता ग्रीवा की सदा करे रक्षा मेरी। मेरुदंड की धनुर्धारिणी माँ दुर्गा रक्षा करे। दो कंधों की खड्ग धारिणी सदा करे रक्षा मेरी। दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी सदा करे रक्षा मेरी। दोनों हाथों की अंगुलियों की सदा करे रक्षा मेरी। माँ शूलेश्वरी सभी नखों की सदा करे रक्षा मेरी। कूलेश्वरी माँ कुक्षी में रह के सदा करे रक्षा मेरी। महादेवी माता सीने की सदा करे रक्षा मेरी। शोक विनाशिनी देवी मन की सदा करे रक्षा मेरी। ललिता देवी माता हृदय की सदा करो रक्षा मेरी। शूल धारिणी उदर में रहकर सदा करे रक्षा मेरी। नाभि भाग में देवी कामिनी सदा करे रक्षा मेरी। कटी में भाग भगवती देवी सदा करे रक्षा मेरी। विंध्यावासिनी माँ घुटनों की सदा करे रक्षा मेरी। मनोरथों की महाबला देवी सदा करे रक्षा मेरी। नारसिंह दोनों घुटनों की सदा करे रक्षा मेरी। तेज श्री देवी पैरों की सदा करे रक्षा मेरी। केशिनी देवी माँ केशों की सदा करे रक्षा मेरी। रोम रोम की माँ को बेरी सदा करे रक्षा मेरी। देवी पार्वती रक्त मजा की सदा करे रक्षा मेरी। काल रात्रि आंतों की हमेशा सदा करे रक्षा मेरी। श्री पद्मावती मूलाधार में सदा करे रक्षा मेरी। ज्वालामुखी माँ शौर्य तेज की सदा करे रक्षा मेरी। देवी अभेद्या अस्त्र शस्त्र से सदा करे रक्षा मेरी। क्षेत्रेश्वरी सभी कष्टों से सदा करे रक्षा मेरी। धर्म धारिणी मन बुद्धि की सदा करे रक्षा मेरी। वज्र धारिणी प्राण वायु की सदा करे रक्षा मेरी। धर्म धारिणी मन बुद्धि की सदा करे रक्षा मेरी। वृज धारिणी प्राण वायु की सदा करे रक्षा मेरी। योगिनी देवी माया मोह से सदा करे रक्षा मेरी। नारायणी सकल दुर्गुण से सदा करे रक्षा मेरी। माता वैष्णवी धर्म कर्म की सदा करे रक्षा मेरी। चक्रिणी देवी यश कीर्ति की सदा करे रक्षा मेरी। श्री इंद्राणी गोत्र वंश की सदा करे रक्षा मेरी। श्री महालक्ष्मी संतानों की सदा करे रक्षा मेरी। श्री वैष्णवी देवी भार्या की सदा करे रक्षा मेरी। क्षेम करे माँ दुर्गम पथ पर सदा करे रक्षा मेरी। देवी जयंती पाप नाशिनी सदा करे रक्षा मेरी, वास करो माँ मेरे घट में सदा करो रक्षा मेरी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।
जय माता दी, सदा करो रक्षा हमारी सबकी। और ये नवरात्रे जो है, हम सब पूरी जोश से, लगन से आत्म सुधार की तरफ फोकस करें, तप करें, सत्संग करें, साधना करें, सेवा करें, और दूसरों की निंदा चुगली से बिल्कुल बचें। और जो भी हो सके संकल्प जरूर कीजिएगा। और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ये हमारा बेस्ट पॉसिबल नवरात्रे जाए। इस बार सब लोग मिलजुल के जोश से हमें माता रानी खूब शक्ति दें कि हम आत्म सुधार करके प्रभु के प्रेमी बन सकें और एक प्रेरक इंडिविजुअल बन के सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकें। तो बोलिए माता रानी की जय, बोलिए शैल पुत्री माता की जय हो, बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय हो, बोलिए चंद्र घंटा माता की हो जय हो, बोलिए कुछ पांडा माता की जय हो, बोलिए स्कंद माता की जय, बोलिए कट्यानी माता की जय, बोलिए कालरात्रि माता की जय, बोलिए महागौरी माता की जय हो, बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी नवरात्र वंस अगेन, घर घर मंदिर हर हर मंदिर, जय माता दी, हरि हरि बोल।
घर घर मंदिर हर मन मंदिर, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल।